ओम शांति। प्रकृतिनाथ मीठे बाबा के आप सभी प्रकृति पति बच्चों को, हमारे रूहानी बहन और भाइयों को बहुत बहुत प्रेम और सम्मान। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, निरोगी रहें और ऐसे ही अथक साधना और सेवा में जीवन सफल करते रहें, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अगले चरण में आज हम चर्चा करेंगे स्थूल स्वास्थ्य, स्थूल शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। कल जो चर्चा हुई उसका कुछ लाभ मिला? मिला तो खुशी की परसेंटेज कितनी रही आज? अच्छी रही। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, टॉप अप करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं ताकि बैलेंस खत्म ना हो, इसलिए ऐसे ही दिन में जब भी याद में बैठे, सेवा में करें बैठे, तो उससे पहले और बाद में एक खुशी की शक्ति भरते रहें। स्मृति सो समर्थि, तो जब स्मरण रहेगा हम खुशी के सागर के बच्चे हैं और हमारा लक्ष्य है खुश रहना और खुश करना सबको जो भी संपर्क में आए, तो खुशी देने से और खुशी भरने से खुशनुमा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं खुशनुमा खुश नसीब, तो खुश नसीब तो है, खुशी का सागर मिल गया, नसीब है हमारा। तो जब नसीब है साथ तो नसीब भी है, नसीबा भी है नसीब बनाने वाला। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों का फिर चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशनुमा, तो देखते ही न धन लगे न कुछ लगे, सिर्फ चेहरा देख के ही तबीयत खुश हो जाए उसकी भी। तो खुशी आएगी तो हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस सेट हो जाएगा, खुशी के हार्मोन निकालेगा, तो हमारे शरीर का हर कोशिका भी खुश होकर स्वस्थ बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी और सेवा साधना में सहयोग देती रहेगी। तो वह है आत्मिक शक्ति, खुशी द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना। अब थोड़ा सा इस शरीर के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शरीर को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं प्रकृति, है ना? एक होती है बेहद की प्रकृति संसार, जो स्थूल आंखों से दिखाई देता है, एक है हद की प्रकृति, और इस प्रकृति का मालिक कौन? प्रकृतिनाथ शिव बाबा, है ना? और बाबा ने क्या किया, बेहद की प्रकृति के तत्वों से ये हद का शरीर मिल गया, तो इसको भी कहेंगे हद की प्रकृति। तो जो बेहद की प्रकृति की रचना के जो अंश हैं, पांच तत्वों से ये संसार बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं पांच तत्वों से ही हमारा स्थूल शरीर भी बना है। तो मास्टर प्रकृतिनाथ हैं, प्रकृतिनाथ तो नहीं कहेंगे, प्रकृतिनाथ के बच्चे हैं, लेकिन प्रकृतिपति सभी हैं, है ना? क्योंकि प्रकृति तो हमारा है ना, शरीर मिला है ना, तो उसका अधिकार आपका है, तो इसलिए प्रकृतिनाथ के बच्चे हम प्रकृतिपति आत्माएं हैं। लेकिन ये प्रकृति क्या करती है? जैसे बेहद की प्रकृति कभी तूफान, कभी आंधी है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, सबको हिलाते रहते ना, प्रकृति पतियों को भी हिलाते रहते, ऐसे ये हद की प्रकृति भी प्रकृति पति आत्माओं को हिलाती रहती। बीमारी आती है, जब मलेरिया चढ़ता तो कैसे कांपता है शरीर, काबू में रहता है सारा शरीर, कितना कंट्रोल करो हिलता ही रहता है, बुखार है बीमारी है। तो ऐसी आत्मा भी जो प्रकृति की मालिक है उसको भी हिला देती आत्मा को, प्रकृति हद की, जब इसमें रोग पैदा हो जाता है। तो प्रकृति में जब विकृति आती माना बीमारी आती तो आत्मा पे भी प्रभाव पड़ता है और आत्मा का प्रभाव प्रकृति में पड़ता है। तो अगर हम इस समान में हैं कि मैं आत्मा इस प्रकृति की मालिक हूं, तो अगर हम मालिकपन के समान में है तो शरीर काबू में है, आंखें काबू में है, इंद्रियां काबू में है, लेकिन जब भूल जाते तो जैसे नौकर मालिक को बेबस कर देते, ऐसे शरीर भी आत्मा मालिक को बेबस कर देता है। तो अगर इस पर ज्ञान है और कंट्रोलिंग पावर है तो ये हमारा गुलाम बनकर हमारी सेवा करता, और अगर हम गफलत में जाती आत्मा तो ये हमें अपना गुलाम बना लेता है ना। तो प्रकृति के पांच तत्वों से बेहद का संसार बना, उन्हीं पांच तत्वों से ये शरीर भी बना जो कि इंस्ट्रूमेंट है सेवा का, साधना का। तो जैसे आत्मा का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण जरूरी है, ऐसे ही शरीर का भी शुद्धिकरण सशक्तिकरण जरूरी है। क्यों? कि इस संगम युग पे शरीर का बहुत महत्व है। वैसे तो महत्व पूरे कल्प में ही है, क्योंकि शरीर है तो अस्तित्व है स्थूल में आपका, तो ऐसे संगम पे इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। क्यों? कि पूरे 5000 साल के लिए अब का ये सहयोग इस शरीर का हमें साधना और सेवा के द्वारा हमें भाग बनाएगा, शक्ति भराएगा पूरे कल्प के लिए आत्मा। तो आत्मा की प्राप्ति में शरीर का बहुत बड़ा योगदान है इस समय। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ भी रखना, निरोगी भी रखना, शक्तिशाली भी बनाना, ताकि हमारी साधना और सेवा निरंतर अखंड चलती रहे। क्योंकि जब शरीर रोगी हो जाता तो क्या होता, साधना सेवा तो खंडित होती ही होती, साथ में जो साथी हैं उनका भी समय लेना पड़ता। वैसे आयोग तुम बीमार है तो यज्ञ का भी टाइम मनी एनर्जी और साथियों का भी टाइम मनी एनर्जी खर्च होती। ऐसा नहीं कि बीमारी हो तो हम सहयोग ना लें, कई बार हम भारी भी हो जाते हैं, भाई अब शरीर बीमार हो गया चलो सहयोग लेना पड़ा, तो सहयोग लेने में भारी हो जाते हैं। तो पहली बात तो कोशिश यही रहनी चाहिए पुरुषार्थ से कि शरीर स्वस्थ बना रहे, जरूरत ही ना पड़े किसी के सहयोग की। लेकिन अगर लेना भी पड़े तो फिर भारी नहीं हो, क्या संकल्प रखें कि इसको स्वस्थ बनाते ही जितना लिया है उसका कई गुना रिटर्न दे देंगे। देवता ये तो करते ना, थोड़ा सा लेंगे अनेक गुना देंगे, तो फिर भारी भी ना हो। लेकिन कोशिश ये रहे कि जरूरत ही ना पड़े, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। पहला है शुद्धिकरण। पांच तत्व शरीर बनाए तो इन पांच तत्व इस समय प्रदूषण है, पूरा प्रदूषण तो सुना है ना सबने, पॉल्यूशन है। पांचों तत्व इस समय प्रदूषित है। पृथ्वी भी देखो कितनी कीटनाशक छिड़कते हैं, कितनी खाद पानी केमिकल लगाते हैं। तो प्रकृति भी, पानी भी, हवा भी और वायुमंडल भी, सूक्ष्म प्रकंपन, थॉट्स, विचार, तरंगे दूषित, तो सारा तत्व जो है प्रदूषित है इस समय। तो अगर कोई मकान बनाता है जैसे सीमेंट से, ईंट से, चूने से या उससे रेत से, बालू रेत से, अगर पांचों तत्वों में ही उनमें जो तत्व बने हैं मकान के, लोहा है वो इसमें सब मिलावट है, तो मकान कैसे बनेगा, है ना, तो मकान भी गिर जाएगा जल्दी जल्दी। ऐसे ही जिन तत्वों से हमारा शरीर बनता है या मेंटेन होता है, अगर ये तत्व ही प्रदूषित हैं तो इनसे बनने वाली रचना भी कैसे होगी। इसलिए आजकल कितना अच्छा अच्छा भोजन पहले तो मिलता है, नहीं तो लोगों को पूरा भोजन ही नहीं मिलता था। आजकल तो कितना पौष्टिक भोजन मिलता है, लेकिन पौष्टिक होते हुए भी जान कुछ नहीं है, शरीरों में जान नहीं है। खूब खाते फिर भी कहते हैं क्या करें, शरीर में शक्ति नहीं है, कोई टॉनिक दो, कोई ताकत की दवाई दो, कुछ और चीज दो, कुछ इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि पांचों तत्वों में ही जान नहीं है और जो है उसमें भी प्रदूषण घुसा हुआ है। तो शुद्धिकरण पहली चीज है। दूसरा है सशक्तिकरण। इन तत्वों में शक्ति कैसे भरे, तीसरा संतुलीकरण। अब जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो रेत में और सीमेंट का जैसे 1:5 का रेशो डालेंगे, ज्यादा मजबूत करना होगा 1:4 का रेशो डालेंगे रेत और सीमेंट का, और हल्का करना है 1:6 का कर लेंगे। लेकिन अगर रेता ज्यादा हो सीमेंट कम हो तो सब बिल्डिंग सब हिल जाएंगे। तो ऐसे ही संतुलीकरण भी जरूरी है। जो तत्व हम खा रहे हैं शरीर को दे रहे हैं इनकी मात्रा का संतुलीकरण भी जरूरी है। नहीं तो कई बार कुछ लोग बहुत खाएंगे लेकिन संतुलित नहीं होता है, तो या तो मोटे हो जाएंगे या फिर और बीमारी आ जाएंगी। कहेंगे भी खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हो, महंगा खा रहे हो, 500 रुपए रोज की डाइट खा रहे हो, लेकिन शरीर में शक्ति है नहीं, या तो मोटे हो जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे सब कुछ खाते हुए भी। तो संतुलन भी जरूरी है। और चौथा है सकाश, क्योंकि शरीर को चलाने वाला कौन, आत्मा। तो आत्मा है सूक्ष्म और शरीर है स्थूल, तो स्थूल और सूक्ष्म के बीच में क्या है जो शरीर को चला रहा है, कल बात आई थी ना, क्या है दोनों के बीच में, सूक्ष्म तत्व है विचार तरंगे। विचार तरंगे आत्मा से ऐसे ही निकलती हैं, जैसे रिमोट होता है ना, बटन दबाते हैं तो तरंगे निकलती हैं, इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, वो जाके स्थूल मशीनरी को एक्टिवेट कर देती हैं। अब देखो मशीन है सूक्ष्म स्थूल और तरंगे सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तरंगे स्थूल मशीनरी को एक्टिवेट करती हैं। ऐसे ही आत्मा सूक्ष्म, शरीर स्थूल, हाइपोथैलेमस स्थूल, लेकिन विचार सूक्ष्म तरंगे जो दिखाई नहीं देती हैं, वो जाती हैं और स्थूल शरीर को एक्टिवेट कर देती हैं, चालू करती हैं। तो उन तरंगों को अगर तरंग शक्तिशाली होंगी तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट भी शक्तिशाली बनेगा, ठीक संचालन करेगा इसका। और सूक्ष्म विचार तरंगों के साथ में क्या चलती है, प्राण, पांच प्राण होते हैं ना, तो प्राण शक्ति, प्राणिक हीलिंग या प्राणिक एनर्जी कहें तो, वैसे तो 10 तरह के प्राण एनर्जी ऊर्जा कही गई है, लेकिन पांच मुख्य उसमें, पान अपान व्यान उदान समान, ये पांच तरह के, वैसे पांच और भी हैं। तो प्राण वायु जो विचार तरंगों के साथ मन से चलती है, मन आत्मा की शक्ति, उससे जो विचार तरंग चलती है उसके साथ में प्राण ऊर्जा भी जाती है स्थूल शरीर के अंदर, और पांच प्रकार के कार्य करती है, फंक्शन करती है, जिससे इस शरीर का चलता है। तो हम चार स्टेप की थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य हर विषय तो बहुत विस्तृत है, तो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें ही होंगी, बाकी समय मिलता रहेगा तो आगे चर्चाएं होती रहेंगी, तो सारा तो कवर करना संभव नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म थोड़ा 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 टच करेंगे उसमें। तो पहला है शुद्धिकरण, तो ये तो हमने जाना, सब देखते ही हैं कि पांचों तत्व इसमें पूरे तरह प्रदूषित है। तो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी माना पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ, अन्न दाल फल सब्जी आदि जितनी भी हैं जो पृथ्वी से पैदा होती हैं, ये हमारे शरीर का 1/3 हिस्सा है सॉलिड। अगर किसी मृत शरीर को जलाया जाए तो 35% उसका सॉलिड निकलेगा, और 70% दुगना 35 का, यानी कि रफली 70% समझ लो उसका, 33% अगर माना सॉलिड तो 66% उसकी पानी है उसके अंदर, वो हवा में उड़ जाता है, और 1% उसमें जो गैसेस होती है, प्राणवायु, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आदि गैसेस। तो इस तरह हमारा शरीर की रचना में 1/3 सॉलिड, 2/3 पानी और 1% गैसेस, ये होता है। बाकी खाली स्थान, आकाश माना खाली स्थान, जो हमारे अंदर भी है हमारे बाहर भी है। तो अब जब भी हम भोजन करते हैं शुद्धिकरण करने के लिए तो क्या करें, क्योंकि आजकल तो जानते हैं ना कि कीटनाशक छिड़कते हैं फसलों पे, क्यों, कीड़े ना खा जाएं। तो कायदे में तो इनकी संतुलित मात्रा ही डालनी चाहिए, बहुत कम, लेकिन हिंदुस्तान के किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं, इतना छिड़कते हैं कि वो तो वो कई फसल आगे तक कीड़े ना लगे, इतना ओवरडोज कर देंगे, तो वो सारी ओवरडोज जब पानी के साथ में फिर मिट्टी में चली जाती, मिट्टी से जब पौधा खींचता है पानी को तो वो कीटनाशक सब पेड़ पौधे जो उनके फल फूल है, अन्न है आदि आदि चीजें हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। और देखा जाता है कि जो मानक मात्रा है, स्टैंडर्ड मात्रा है कीटनाशकों के, कायदे में तो जीरो होनी चाहिए, लेकिन इसके बिना काम चलता नहीं कीटनाशक के बिना। तो जो कीटनाशक सिंथेटिक टाइप के होते हैं तो उसकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो शरीर के लिए बहुत ही घातक है। तो विदेशों में तो बहुत कंट्रोल होता है, ऐसे अन्न को इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन यहां तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहां पे तो अगर अन्न का गवर्नमेंट ऑर्डर भी निकाल दे कि इतना मात्रा से ज्यादा कीटनाशक है तो ये अन्न नष्ट कर दिया जाए, तो सारे किसान गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चालू, गवर्नमेंट को गिरा देंगे। इसलिए सरकार छोड़ देती है कहके, लेकिन मानता तो कोई है नहीं। तो आजकल जितने भी कीटनाशक फल पदार्थ हैं, फल है, सब्जियां हैं, उसमें कीटनाशकों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इतनी जहरीली है कि वो शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करती है, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़े, हर चीज तो घर में नहीं उगा सकते आप। ऐसे पानी, तो इसको शुद्ध करने के लिए पहले क्या करें, एक तो होती है स्थूल शुद्धि, दूसरी है सूक्ष्म शुद्धि। तो स्थूल शुद्धिकरण के लिए जो खेतों में सब्जियां उगाते हैं तो जो गंदे नाले के पानी होते हैं शहर के, आजकल वो डालते हैं, क्यों, कि उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उससे फल सब्जियां ज्यादा मात्रा में उगती हैं। जो गंदगी होती है वो गंदा पानी सॉइल जो उसका जो वेस्ट होता है वो अगर वैसा खाद डाले तो महंगा भी पड़ता है और वो डाले तो उसमें उपज भी बढ़िया होती है, तो इसलिए वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर बहुत कीटाणु होते हैं, तो कीटाणु जो होते हैं उसके कीटाणु भी ऐसे होते हैं अगर पानी में उसको उबाले नहीं तो कीटाणु मरता नहीं है। तो खालिस पानी से धोने मात्र से ज्यादा अक्सर क्या करते हैं फल सब्जियां क्या करेंगे पानी से ही धोएंगे और खा लेंगे। बहुत से लोग धोते भी नहीं है, अधिकांश लोग धोते भी नहीं है, है नहीं? कुछ लोग चलो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा के बच्चे हैं, धो लेंगे उसे, लेकिन धोने मात्र से उसके कीटाणु मरते नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वो कीटाणु जो शरीर में जाते हैं तो 22 तरह की बीमारियां फैलाते हैं, भोजन में और पानी में अशुद्धि से 22 तरह की बीमारी। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारे जैसे देश, उसमें जो अधिकांश बीमारी है उनका मेजोरिटी हिस्सा ये कीटाणु ही है। विदेशों के अंदर तो और बीमारी है, डायबिटीज है और चीजें हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देशों के अंदर जो कीटाणुओं से बीमारियां पैदा होती है उनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो अगर हम भोजन तत्व को और पानी को शुद्ध कर लें तो उससे ही बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा, 2/3 बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करें कि कच्ची चीजें ना खाएं। वैसे तो कच्चा भोजन अच्छा रहता है क्योंकि उबालने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कच्चे में आजकल गंदगी इतनी है अगर खाएंगे तो वैसे ही उसमें बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ बचने के लिए, बड़ा नुकसान उस बचने के लिए क्या करते हैं, छोटा नुकसान सहना पड़ता है। कहते हैं इधर कुआं इधर खत्ती, किधर किधर कूदे देखना पड़ेगा, इधर खाई है इधर खत्ती है, खत्ती माना बहुत गहरा गड्ढा है, तो किधर कूदेंगे, जिधर कम गहरा है कूदना तो पड़े मजबूरी है। तो क्या करें, उसको भोजन को कच्चा ना खाएं, जो सलाद है कच्ची सब्जियां हैं इनको खौलते पानी में 2 मिनट डाल दें तो 2 मिनट में कीटाणु मर जाते हैं उसके, है ना। हाँ। नमक में भी डालते हैं, गहरा नमक गाढ़ा नमक हो 3% चाहिए, लेकिन 100 ml में 3 ग्राम नमक हो तो डालेंगे तो कीटाणु मर जाएगा उसका, उससे ही मर जाता है। तो अगर उबाल सकते हैं तो उबाल लें। अब जैसे चटनी होती है धनिया पुदीना आदि की, तो गंदे नाले के पानी पड़ते हैं सब, खालिस क्या करेंगे धोएंगे और पीस लेंगे, तो पेट में कीटाणु पेचिस गैस आदि बनाएंगे जाके, पेट में गैस का रोग आदि बन जाते हैं। तो इसलिए पहले इस्तेमाल करने से पहले खौलते पानी में 2 मिनट डाल दें। जो चीज पक जाती है, जो सब्जियां बनती हैं घर में तो वो तो पकती है तो उनको तो कोई जरूरत नहीं है, खालिस सादे पानी से धो लें। और पहले सब्जियों को भी सबको भी घंटे 2 घंटे डुबा देना चाहिए पानी में, ताकि जो एक्स्ट्रा कीट है कीटनाशक जो दवाइयां डालते हैं वो हट जाए। उसके बाद 2 मिनट खोलते पानी में डालेंगे तो फिर कीटाणु भी मर जाए, कीटनाशक हटेंगे पहले फिर कीटाणु हटेंगे। ऐसे फल खाने से पहले पानी में डाल दें अच्छी तरह, कीटनाशक हटा दें उनके, और उसके बाद में जो फल छिलके समेत खाए जाते हैं उनको लाल पोटास पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर होता है क्लोरीन उसमें डालेंगे सॉल्यूशन में तो कीटाणु मर जाएंगे उसके और कीटनाशक भी हट जाएंगे। आजकल कुछ मशीनें भी आ गई हैं बाजार में जिसमें कीटनाशक हटा देते हैं, ओजोन पंप, तो उसमें भी डाल दें 5-5.5 हजार का आता है जो अफोर्ड कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, तो उसमें ओजोन गैस निकलती है उससे जो कीटनाशक है और जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। जिनको उबाल नहीं सकते फलों को उसमें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मजबूरी है फिर तो ज्यादा सोचे ही नहीं, क्योंकि सोचने से फिर निगेटिव इफेक्ट सोचने का आ जाएगा। जितना साधन बन सके सहज उतना करना चाहिए, बाकी जो संभव नहीं है वो साक्षी होकर फिर सहन करना पड़े। तो बच सकते तो बचे, तो कच्ची चीज ना खाएं, खाने से पहले 1.5-2 घंटा अगर सादे पानी में डाल दें, उसके बाद जो चीज कच्ची खाद उबाल सकते हैं उनको उबाल लें, जो नहीं उबाल सकते हैं उनको क्लोरीन वाटर में या लाल पोटास में पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर में डुबो दें और फिर उनको इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक स्वच्छ भोजन पा सकेंगे। ऐसे ही पानी, तो यहां तो बाबा के बच्चे देखो बहुत रॉयल हो गए सब, बाहर मिनरल वाटर कितना महंगा 10 रुपए की एक बोतल आती है 1 लीटर की, 10-12 रुपए की, और यहां तो आपको कितना पानी, सब पानी शुद्ध मिनरल वाटर ही पीने को मिलता है ना। तो बाहर, लेकिन जहां घर में अगर आरओ नहीं है किसी के यहां या फिल्टर मशीन नहीं है तो पानी को 1 मिनट खदका लें, खौला लें बॉइलिंग, उसके बाद पानी को ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कीटाणु मर जाएंगे, लेकिन पानी तो भारी हो जाता है, धातु जो उसके अंदर रह जाती है तो उस धातु को नीचे बैठने दें और बाकी ऊपर का पानी इस्तेमाल कर लें। लेकिन बहुत ज्यादा पानी को उबालने से जो उसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं धातु में होती हैं वो भी निकल जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा फिल्टर्ड, बहुत ज्यादा उबला हुआ पानी भी इस्तेमाल ना करें। तो संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करें, उबालने के लिए तो सादा पानी इस्तेमाल कर लें, जो चीजें उबले दाल में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे। पीने के लिए फिल्टर का पानी ले लें, क्योंकि फिल्टर के पानी में धातु में कई बार इतनी निकल जाती है कि लोगों को बाइटे आ जाते हैं। बाइटे समझते हैं, नसें चढ़ जाएंगी हाथ की पैर की। तो पानी बहुत ज्यादा फिल्टर वाटर है, बहुत ज्यादा बॉइल्ड पानी इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम सोडियम आदि जो तत्व हैं वो पानी से निकल जाते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक है। धातुएं निकल जाती हैं, खारिज पानी जाता है शरीर में, तो धातुओं की कमी से भी बाइटे चालू हो जाते हैं। इसलिए उबालने में सादा पानी इस्तेमाल कर लें और पीने में आरओ का पानी या फिल्टर का पानी इस्तेमाल करेंगे तो धातुओं की जो मात्रा है वो संतुलित हो जाएगी, है ना। तो पानी को उबाल लें, कम से कम एक मिनट दो मिनट छान लें और फिल्टर पानी इस्तेमाल करेंगे तो पानी शुद्ध हो जाएगा। और बहुत से लोग फिल्टर मशीन इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें जो कैंडल होती है वो तीन महीने में बदल, जब भी कलर चेंज हो जाए कैंडल का तो कैंडल चेंज कर लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा लालच कर जाते हैं, कैंडल ज्यादा महंगी नहीं होती है 60-70-100 रुपए की, लेकिन उसको सालों साल इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, जितनी सारी गंदगी उसमें इकट्ठी होती रहेगी। तो इसलिए कैंडल जो है, पहली जो फिल्टर है उसको बार बार तीन तीन महीने में जो भी कलर चेंज हो जाए उसका बदलते रहना चाहिए। आप देखेंगे कभी उसको कैंडल को बाहर निकाल के, इतनी गंदगी होती है तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी गंदगी हमारे शरीर में जा रही थी। तो फिल्टर को भी बीच बीच में उसका फिल्टर चेंज कराते रहें, तो उससे क्या होगा, पानी तत्व हमारा शुद्ध हो जाएगा और भोजन तत्व भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो ये सावधानी रखें। तो पहला है शुद्धिकरण, पृथ्वी का हो गया, जल का हो गया, फिर है हवा का शुद्धिकरण। तो बहुत से घर जाते हैं, बाबा का घर है, सारे में वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन है, शुद्ध वायु मिल रही है आपको। लेकिन बहुत से शहरों में जमीनें बहुत महंगी, घर छोटे छोटे होते तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होने से क्या होता है कि जो घर की वायु है वही घर में घूमती रहती है शुद्ध वायु, और उसकी वजह से क्या होता है, देखा गया कि वैसे तो घर की वायु शुद्ध होनी चाहिए, बाहर की वायु अशुद्ध होनी चाहिए, लेकिन आजकल जो बड़े शहर है, कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां देखा जाता है कि बाहर के मुकाबले घर के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, हवा के अंदर प्रदूषित। तो उसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन करें घर में, और जो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं संभव हो तो एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। बेडरूम किचन जो एरिया वहां पे छोटे छोटे अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे तो शुद्ध हवा मिलेगी, अंदर जाएगी, अशुद्ध हवा बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन देखा गया है कि जो लोग बंद कमरे में सोते हैं सब कुछ बंद करके, ऐसे लोग ज्यादा घंटे की नींद चाहिए और फिर भी सुबह को जब उठेंगे तो थके हुए उठते हैं। लेकिन अगर आप खुले में सोएं तो आप देखेंगे कम घंटे के अंदर ही ज्यादा फ्रेशिंग नींद आती है और सुबह को तरोताजा उठते हैं। कभी प्रयोग करके देखें, बंद कमरे में सोके या खुले में सोके, गर्मी का मौसम हो, अच्छा मौसम हो तो आप देखेंगे कि खुले एरिया में ऑक्सीजन जो होती है तो हमारे शरीर की हर कोशिका को ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो पूरी मात्रा में नहीं होती है तो शरीर थका हुआ और मन चिड़चिड़ा रहेगा। तो शुद्ध ऑक्सीजन जरूरी है, तो प्राणवायु तीसरा तत्व शुद्ध हो गया। चौथा तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि माना एनर्जी। तो जो एनर्जी पैदा होती है शरीर के अंदर, एक तो सूरज से मिलती है हमें, सूरज की रोशनी में आदमी कोई बैठता ही नहीं, कुछ तो इसलिए नहीं बैठते कि समय नहीं मिलता, कुछ इसलिए नहीं बैठते कि काले हो जाएंगे। तो आजकल तो क्रीम, फेयरनेस क्रीम और ये क्रीम और वो क्रीम लगाते हैं, फिर रंग गोरा हो जाए और वहां रंग काला हो जाए, तो इसलिए कोई बैठता ही नहीं धूप में, और कुछ कहते हैं समय नहीं मिलता हमें। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि धूप में बैठने से शरीर में विटामिन डी पैदा होती। आप कितना भी कैल्शियम खाएं लेकिन विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम यू निकल जाता, वेस्ट चला जाता है, शरीर में हड्डियों में पहुंचता नहीं है। तो इसलिए आप कहेंगे कोई कहे दूध तुम बहुत सारा पी रहे फिर भी हड्डी कमजोर है, कमजोर इसलिए है कि कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन डी चाहिए, वो धूप से बनती है और धूप में कोई बैठता नहीं है। तो इसलिए धूप की गर्मी भी, देखो सर्दियों के अंदर जब ठंडक होती है हल्की मंदी, धूप में भी ऐसा लगता है कितनी शक्ति, कितनी जान पड़ रही है शरीर में, बैठे रहो, शक्ति सेकते रहो, तो एनर्जी मिलती है। और अगर एनर्जी नहीं लेंगे धूप से तो क्या होता है, शरीर को ज्यादा गर्मी पैदा करनी पड़ती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए धूप का सेवन करें। चेहरा काला होने का डर है, चलो चेहरे को चेहरा ढक लें छाए में, कैप लगा लें, लेकिन बाकी इतना हिस्सा अनकवर्ड रहे आधा घंटा कम से कम आती जाती धूप में, तो विटामिन डी बनेगी और शरीर को हड्डियां मजबूत करेगी। तो पहले जमाने में क्या करते थे लेडीज, बच्चों को मालिश करा और धूप में लेटा दिया तो हड्डियां मजबूत होती है। आज का जरा फिसलते हैं, क्या हुआ है कि जरा सा पैर मुड़ गया, फिसल गया, क्या हुआ, हड्डी टूटी, खुलेगी, रॉड डलवाओ, ये डलवाओ। तो और पहले लोग खूब उछल कूद करते थे, गिरते थे, फांदते थे, फिर भी कहां हड्डियां बड़ी मजबूत होती है। आजकल तो ककड़ी की तरह टूट जाती है ना, जरा सा बच्चा, क्या बच्चा गिरा, हड्डी टूटी। क्यों? कि विटामिन डी मिलती नहीं किसी को। तो विटामिन डी लेने के लिए एक तरीका तो यह कि धूप में बैठे, लेकिन नहीं संभव हो तो विटामिन डी की टेबलेट्स भी आती हैं। विटामिन डी D3 मस्ट के नाम से आती है, D3 मस्ट सबसे सस्ता ब्रांड है, D3 मस्ट 60,000। 2 महीने में एक गोली खा लें तो 60,000 की आती है यूनिट की। तो वो अगर 2 महीने में एक गोली खा लेंगे तो विटामिन डी आपके कैल्शियम जो पानी में होता है, भोजन तत्व में होता है, दूध में होता है, उस कैल्शियम को आपकी हड्डी में जमा करके आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगी। ठीक है, तो धूप में बैठें या विटामिन डी का इस्तेमाल करें। तो पहला तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश माने अंदर और बाहर का जो रिक्त स्थान है, तो वायुमंडल वातावरण शुद्ध रखे। कूड़ा करकट जमा होगा घर के अंदर तो मच्छर मक्खी पैदा होंगे, फंगस आएगी, फफूंदी आएगी। घर के बाहर होगा तो मक्खी मच्छर वहां पैदा होके सीधे आपके घर में आएंगे। और सबसे बड़े पड़ोसी तो आप ही होंगे ना कूड़े करकट के। घर के बाहर तो डाल दिया, लेकिन वहां जो कीटाणु पैदा होंगे वो कहां जाएंगे, सबसे ज्यादा आपके दरवाजे में घुसेंगे पहले। तो इसलिए आसपास से कूड़ा करकट जितना हटेगा, शुद्ध रहेगा, उतना ही वायुमंडल वातावरण शुद्ध रहेगा। तो ये 5 तत्व हम शुद्धिकरण करेंगे तो हमारा इन 5 तत्वों से बनने वाला जो शरीर है ये भी शुद्ध होता जाएगा। तो शुद्धिकरण, दूसरा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के लिए एक तो बताया कि धूप, धूप से एनर्जी लें या विटामिन डी लें। दूसरा एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जो भोजन बहुत से लोग खाते खूब है लेकिन फिर भी कहते बड़ा शरीर कमजोर रहता है, बड़ा शरीर में ताकत नहीं है, क्यों? एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे बाबा से, बाबा रोज कितना ज्ञान भोजन खिलाता है, हैं? लेकिन बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, माना विचार सागर मंथन नहीं करते, यूज नहीं करते। तो ज्ञान इतने साल हो गए 77 ईयर्स, फिर भी क्या कहते हैं बाबा, आत्मा बड़ी कमजोर है हमारी। तो आत्मा कमजोर क्यों है? भोजन तो बहुत पौष्टिक मिल रहा है, रोज मिलता है शक्तिशाली भोजन, बादाम माजूम बाबा कहते ना, भरपूर देता है शक्तिशाली। तो उस समय जब मुरली सुनते हैं तो शक्ति सी मिलती है, लेकिन उसको पचाते नहीं है। जैसे बहुत से लोग खाएंगे सो बादाम हलवा सब, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे सब पास ऑन हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का भोजन जैसे पास ऑन हो जाता है, शरीर का भी हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है, व्यायाम। और व्यायाम भी 2 तरह के होते हैं, तो सिंपल व्यायाम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, ज्वाइंट्स योगासन, और दूसरे रनिंग। लेकिन ध्यान रखे 40 साल के बाद में एकदम दौड़ने का अभ्यास नहीं करना। जो केवल जो जो उसमें कहे चलो कल से हम चलो एक्सरसाइज करेंगे और दौड़ना शुरू कर देते हैं, हर्ट को आदत होती नहीं इतनी मेहनत करने की, और एकदम लोड डालेंगे तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। इसलिए शुरू में अभ्यास करना चाहिए घूमने का, फिर फास्ट गति से चलने का। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है फास्ट गति से चलो, और इतना चलो कि चक्कर नहीं आए, थकान नहीं हो, सांस ज्यादा नहीं फूले, छाती में दर्द नहीं हो, चक्कर नहीं आए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ है, मंदी स्पीड से जाओ, फिर मंदी स्पीड से आओ। तो एकदम जोश में आके, और यदि पहले दिन तो क्या होता है कि पहले जो नई नई एक्सरसाइज करते ना तो शरीर मांसपेशियां खुली होती हैं, खूब जम के एक्सरसाइज करते हैं। कोई कहता भाई बहुत, अभी भाई 15 मिनट तो बहुत हो गया, आधा घंटा, नहीं नहीं आज तो मैं 3 गुना भी कर सकता हूँ, कर लेते हैं जोश में। फिर अगले दिन सुबह उठते हैं तो सब, और फिर महीनों के लिए छुट्टी हो जाती है। इसलिए जोश में होश ना खोए, शुरू से 15 मिनट से शुरू करें, हर हफ्ते बढ़ाते बढ़ाते 1.5 घंटे तक ले जाए, 45 मिनट्स फास्ट वॉकिंग। अगर हार्ट ठीक है आपका, लंग्स ठीक है, फेफड़े ठीक है, तो 45 मिनट फास्ट वॉकिंग, जिसमें 15 मिनट एक्सरसाइज कर लें सिंपल और 30 मिनट की फास्ट वॉकिंग कर लें, तो उससे आपके शरीर में एक तो जोड़ मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगे, ऑक्सीजन फास्ट जाएगी, गंदी वायु निकलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाएगी, हार्ट लंग्स मांसपेशी जॉइंट सब मजबूत हो जाएंगे एक्सरसाइज से, तो इसलिए वो आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी शरीर को, और जो भोजन खाएंगे वो भी पचेगा। तो सशक्तिकरण, धूप में बैठें, व्यायाम करें और फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो योगी हैं, हट योग क्यों करें। तो प्राणायाम कोई हट योग का हिस्सा है, ये तो बात सही है, लेकिन सिंपल प्राणायाम, जो मुश्किल प्राणायाम होते हैं, सांस रोकेंगे, यहां रोकेंगे, वहां रोकेंगे, वो तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिंपल प्राणायाम तो बड़े कॉमन हो गए। हालांकि प्राणायाम बहुत पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन रामदेव जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, रामदेव बाबा का प्राणायाम। तो वास्तव में प्राणायाम तो बहुत पुरानी पद्धति चली आई है, हाँ उन्होंने उसको अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, इसका क्रेडिट तो उनको जाएगा। तो प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो जो अंदर से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अंदर पहुंचती है कि हर कोशिका को जीवित रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए पौष्टिक तत्व भी चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा तो भोजन तत्वों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे शरीर में। हर कोशिका के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऑक्सीजन यूज करती है, उससे एनर्जी पैदा करती है। तो वो एनर्जी पैदा नहीं होगी शरीर के अंदर अगर प्राणायाम नहीं करेंगे ठीक से। और प्राणायाम करेंगे अगर थोड़ा, फिर देखो आप योग में बैठेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, नहीं तो सुस्ती आती रहेगी, थकान होती रहेगी। तो अगर प्राणायाम करेंगे थोड़ी देर, फिर बैठो योग में, देखो तो चेतनता ही बनी रहेगी और शरीर में भी शक्ति का आभास रहेगा। जो भोजन खाएंगे उससे शक्ति बनेगी, नहीं तो भोजन चर्बी के रूप में इकट्ठा होता जाएगा और शरीर और भारी और बेकार होता चला जाएगा। तो इसलिए सशक्तिकरण, शुद्धिकरण आया, फिर सशक्तिकरण, फिर संतुलीकरण। अब बहुत से लोग खाते हैं तो खाते दो तरीके से खाया जा खाते हैं, एक तो भावना से, एक होता है ईट टू लिव, जीने के लिए खा रहे हैं, और एक है लिव टू ईट, खाने के लिए जी रहे हैं। तो जो खाने के लिए जीते हैं तो वो फिर आसक्ति से जीते हैं, आसक्ति माना उस भोजन में लगाव, इच्छा से कि भाई हमें तो ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है। शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं है, लेकिन जवान को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे बहुत सारी बातें, चीजें ऐसी है खाने में कि मन को बड़ा अच्छा लगता है और डॉक्टर कहते हैं शरीर के लिए बड़ा नुकसान है। तो मन तो मरवाने वाले काम ज्यादा करता है, माया बैठी है ना, सारे उल्टे काम जो नुकसानदायक हैं वो मन को बड़े अच्छे लगते हैं, और जो लाभदायक काम है तो शरीर कहेगा भाई हमें चाहिए, और मन कहेगा नहीं ये नहीं देने के। तो अच्छी चीज नहीं देता मन, बुरी चीज के लिए फौरन सहयोगी बन जाता है, क्योंकि माया बैठी हुई है। तो ऐसे ही देखना पड़े कि जैसे ज्ञान से हम समझ गए कि क्या विचार करने, कौन से संकल्प नहीं करने, ऐसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, वो शरीर का स्वास्थ्य का ज्ञान मिलेगा तो उससे पता पड़ेगा हमें कितना खाना चाहिए। तो कितना खाना चाहिए, संतुलित करण में भोजन में तत्व कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन दालें जैसे होती है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल है, चीनी है, आलू है, कार्बोहाइड्रेट मान जैसे ग्लूकोज बनता है शरीर में, प्रोटीन जिससे मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, फैट चिकनाई इससे हार्मोन्स बनते हैं शरीर के अंदर, है नी, विटामिन्स ऐसे जैसे अग्नि में थोड़ा सा घी डाल दो तो ऐसे कैटलिस्ट का काम करती हैं विटामिन, शरीर में बहुत जरूरी होती हैं। मिनरल्स धातु में, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसी बहुत सारी धातु में, ये सब शरीर के लिए आवश्यक तत्व। तो जो मिनरल्स होते हैं वो सब्जियों में, फलों में और पानी के अंदर मिलते हैं हमें, धातु में जो मिलती हैं, लिक्विड पदार्थ जितने होते हैं ना इनके अंदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं, कैल्शियम दूध में ज्यादा होता है ना। तो भोजन तत्व हमारे जितने भी हैं, पांच तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये पांच तत्व हमारे भोजन के संतुलित मात्रा में जाएंगे तो शरीर के हार्मोन्स, एंजाइम्स, पाचक रस आदि आदि सही मात्रा में बनेंगे, मांसपेशियां, ज्वाइंट्स, हड्डियां सब मजबूत रहेंगी। तो कितना खाना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि अपने शरीर का हाइट देख लें, कितनी हाइट है। जितनी शरीर की हाइट हो, जितने इंच हाइट उतना किलो वजन अधिक से अधिक। माना 5 फुट की हाइट है 60 किलो, कितना 12×5=60 इंच हो गया ना, तो 60 किलो वजन अधिक से अधिक होना चाहिए, इससे ज्यादा तो बीमारी पैदा करेगा। और कम से कम कितना होना चाहिए, हाइट को सेंटीमीटर में नाप लें, 152 सेंटीमीटर हुआ 5 फुट में, उसमें 100 घटा दें 52 किलो, तो कम से कम तो 52, अधिक से अधिक 60, उसके बीच में रखें अच्छा है 55 रखें। तो हाइट सेंटीमीटर में नाप के 100 घटा दें, कम से कम वजन इतना हो, इससे कम होगा तो कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, फिर थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, फिर कोई कहा ये काम करो तो चिड़चिड़ाटा है, गुस्सा आएगी, देखो हम तो वैसे ही मरे जा रहे हैं, ऊपर से काम करवा रहे हैं हमसे, है ना, तो चिड़चिड़ाट हो जाएगी, फिर तो सेवा भी गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा और करना तो पड़ेगा जब ऊपर बॉस बोल रहे हैं तो। तो इसलिए अंडर वेट भी होना ठीक नहीं, ओवर वेट भी होना ठीक नहीं है, तो बीच में रखें उसको सेंटर में। तो अपना हाइट वेट देख के अपना वजन देख ले, संतुलित कितना वजन चलना चाहिए। अब अगर आपका सामान्य वजन है तो कितना खाएं, 2000 कैलोरी चाहिए भोजन। अगर कोई मानसिक काम करता है, शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं करता, जो बहुत से भाई हैं यहाँ पर वो शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, तो उनको करीब 3000 कैलोरी तक चाहिए। जो कम शारीरिक मेहनत करते हैं उनको 2500 तक चाहिए, और जो मेंटल वर्क करते हैं जैसे हम जैसे लोग हैं, कुछ करते हैं ज्यादा, खाली हाथ कलम चलाना, तो 1500 से लेकर 2000 तक बतेरा है। लेकिन जो मेहनत करते हैं शारीरिक, उनको ज्यादा भोजन चाहिए, तो एवरेज आदमी को 2000 कैलोरी भोजन चाहिए। तो 2000 कैलोरी भोजन के लिए सिंपल सा सिस्टम है, 25 ग्राम चीनी या गुड़, 25 ग्राम तेल या घी, 25 ग्राम नट्स, बादाम मालदारों के लिए, गरीबों के लिए मूंगफली काम एक ही करते हैं, मूंगफली और बादाम की ताकत में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है मैंने बादाम खाए तो। मूंगफली क्या है, गरीबों के बादाम है, ताकत दोनों की बराबर है नहीं, वो साइकोलॉजिकल होता है, अभी हम खा रहे हैं इतने महंगे बादाम खा रहे हैं तो साइकोलॉजिकल ताकत है, बाकी ताकत बराबर होती है लगभग मूंगफली की और उसकी। हाँ, क्वालिटी जो चिकनाई होती है उसमें फर्क होता है चिकनाई की क्वालिटी में, बाकी वैल्यू ताकत उतनी होती दोनों की। तो 25 ग्राम मीठा, 25 ग्राम तेल या घी, 25 ग्राम नट्स है ना, 50 ग्राम दाल, 100 ग्राम अन्न, अन्न हमेशा सीरियल्स डबल होने चाहिए, दाल और अन्न है हमेशा, दाल जितनी हो अन्न उसका दुगना होना चाहिए। अगर दो हिस्से अन्न और एक हिस्से दाल खाएंगे तो उसकी जो प्रोटीन निकल के आएगी उसकी ताकत दूध के बराबर होती है, फिर दूध ना भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज आदमी को अगर 100 ग्राम दाल खा रहे हैं तो 200 ग्राम अन्न गेहूं ये जो भी खाते हैं, तो 200 ग्राम में कितने, 40 ग्राम की चपाती होती है करीब एवरेज, 5 या 6 चपाती, यानी कि 2-2 चपाती 3 बार, इससे फालतू 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर वजन सामान्य है, अंडर वेट है तो 3 खा ले, ओवर वेट है तो फिर 1 कर दे घटा के उसकी। तो 100 ग्राम अगर दाल करेंगे तो 200 ग्राम अन्न, ठीक है, और चिकनाई और मीठा, अन्न माना सीरियल्स, अन्न और दाल क्या फर्क है दोनों में, अन्न माना एक दल, एक वन पीस का जो आइटम्स हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है, और दाल माना द्विदल, जिसमें दो हिस्से हों उसको कहेंगे दाल। तो दालें 100 ग्राम और अन्न 200 ग्राम सामान्य वजन अगर है। सब्जी कितनी खाएं, फिर 250 ग्राम फल खाएं और 250 ग्राम सब्जियां जो मौसम की हैं, 250 से आधा किलो भी खा सकते हैं, है ना, 250 मीन्स 250। तो फल कम से कम 250 ग्राम फल लें, 250 ग्राम वेजिटेबल्स लें, ठीक है, और फलों में एक तो रसदार फल हो जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, जो भी मिल जाए मौसम में, और बाकी फल खाएं जैसे आपके जो गूदे वाले फल है, चीकू है, आम है, पपीता है, आदि आदि। तो अगर इतनी मात्रा में लेंगे तो आपके शरीर के जो पौष्टिक तत्व है वो संतुलित मात्रा में शरीर में पहुंच जाएंगे, और उससे क्या होगा, शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति हो जाएगी पौष्टिक तत्वों की। अगर वजन कम है तो इसका 25% बढ़ा लें, और वजन ज्यादा है तो इसमें से 25% घटा लें, ठीक है ना, कुछ ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो 25% घटा लें या बढ़ा लें अपने वजन के अनुसार। नॉर्मल व्यक्ति को 25 ग्राम मीठा, 25 ग्राम चिकनाई, 25 ग्राम नट्स, 100 ग्राम दाल, 200 ग्राम अन्न और 250-250 ग्राम फल और सब्जियां अगर मिल जाएं, तो आपके शरीर को सभी पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा संतुलीकरण। और पानी कितना पिए, जब भी खाना खाएं तो शरीर में कितना अनुपात है पानी का सॉलिड का, 1/2 का, 1/3 अगर पृथ्वी तत्व है तो 2/3 उसमें पानी है। तो भोजन जो खाएं उसमें अगर जितना भोजन खाएं उसका दुगना तरल पदार्थ होना चाहिए, छाछ हो, दाल हो, सब्जी हो, रेशा हो, तो उसमें दुगनी मात्रा मिले। कई बार कुछ लोग क्या होते हैं, पानी तरल पदार्थ कम खाएंगे, सॉलिड फूड ज्यादा खाएंगे, ऐसे लोगों को एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, क्योंकि भोजन को अंदर पचाने के लिए और उसमें से तत्व निकालने के लिए तरल पदार्थ चाहिए। तो अगर भोजन में पानी कम होगा पीते समय, खाना खाते समय, तो खाना मथेगा नहीं ठीक से, मथेगा नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो पौष्टिक तत्व शरीर में नहीं जाएंगे, और वो अनपचत भोजन जब निकलता है बड़ी आंत में जाता है तो भोजन से कीटाणु क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, गैस बन जाती है। कहते हैं पेट में गैस रोग है, तो गैस रोग का मतलब उसका अलग बहुत सारे कारण है। एक कारण यह कि भोजन का ना पचना, और ना पचने का कारण कई कारण होते हैं, उसमें से एक कारण फिलहाल ये समझ लें कि पानी और सॉलिड की मात्रा सही होनी चाहिए। कई बार ब्रेड खा के पेट में जलन हो जाती है, क्योंकि अंदर जितना भी पाचक रस है वो सूत लेता है, सब खींच लेता है अंदर, और वो ठीक से फिर पच नहीं पाता। तो इसलिए हमेशा दुगना तरल पदार्थ, जितना अन्न खाएं उसका दुगना तरल पदार्थ भोजन में ले, तो भोजन ठीक से पचेगा, मथेगा और पचेगा। तो ये ध्यान रखें, पानी की मात्रा सही होनी चाहिए। फिर जो शरीर में भोजन तत्व पचते हैं उससे फिर गंदगी निकलती है, शरीर में गंदगी भी पैदा होती है। वो गंदी चीजों को शरीर से निकालने के लिए एक ही साधन है, पानी। कुछ पसीने से निकलेगा गंदगी, कुछ यूरिन में निकलेगा, कुछ लैट्रिन में निकलेगा। तो पानी जो लोग कम पीते हैं उनको कब्ज का रोग हो जाता है, या पथरी रोग हो जाएगा, या एसिडिटी बनेगी और गैस बनेगी। इसलिए पानी 8 से 10 गिलास पानी जरूरी है, गर्मी में ज्यादा, सर्दी में 8 गिलास। तो ये अगर सामान्य मात्रा में अगर पानी आप पियेंगे पूरा, तो आपका जो सिस्टम है किडनी वगैरह सब सही काम करते रहेंगे, तो बहुत सारे रोग, गुर्दे के रोग, यूरिन का इन्फेक्शन, पथरी, कब्ज, बवासीर, पाइल्स, ऐसी अनेक बीमारियों से बच जाएंगे। तरीका बड़ा सिंपल है, सुबह उठते ही 2 से 4 गिलास पानी पिए, और जब भी खाना खाएं उससे 1 घंटे पहले 1 गिलास, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी पियेंगे, तो ऑटोमेटिकली 8 से 10 गिलास पानी आपके शरीर में पहुंच जाएगा। कुछ लोगों को सादा पानी अच्छा नहीं लगता, तो पानी में शहद डाल लें, नींबू डाल लें, एसिडिटी नहीं है तो नींबू डाल लें, एसिडिटी है तो शहद डाल लें, ऐसा कुछ मिक्स करके भी पी सकते हैं। कुछ लोगों को सादा पानी से जी मचलाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो नींबू या शहद या ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे शरीर के अंदर समुचित मात्रा में पानी मिल जाएगा, तो उससे आपके शरीर की जो गंदगी पैदा हुई वो गंदगी निकलेगी, टॉक्सिन्स, और अगर गंदगी नहीं रुक, पानी कम पिया, गंदगी रुक गई, तो आगे चल के रोग पैदा कर देगी, ठीक है ना। तो ये हो गया संतुलीकरण, और फिर आता है सकाश। वास्तव में ये स्थूल शरीर जो दिखाई देता है ना, ये स्थूल है नहीं, वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये जो स्थूल शरीर टीवी पे आप देखते हैं, चित्र दिखाई देता है, लोग नाचते गाते चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि आपको ज्ञान है इस बात का कि इलेक्ट्रिक से बिजली आई, टीवी में गई, और जो चित्र सामने दिखाई दे रहा है लाइट का है, आप मानते हैं ना लाइट का चित्र है, कोई आपसे कि टीवी में जो दिखाई दे रहे हैं ये हार्ड मास का शरीर है, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्ञान है कि भाई तो लाइट है, हार्ड मास नहीं निकलेगा, टीवी तोड़ेंगे तो हड्डी मास कुछ नहीं आना अंदर से, तो ज्ञान है। वास्तव में ये शरीर जो हड्डी मास का है ये लाइट का बना हुआ है, हम समझते हैं हार्ड मास का हड्डी मास तो है, लेकिन वास्तव में ये सब लाइट का बना हुआ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। अगर किसी जंगली आदिवासी को दिखाएं टीवी तो क्या कहेगा, अरे बहुत सारे लोग नाच रहे थे टीवी के अंदर, है ना, उसे पता नहीं ना ज्ञान इस चीज का। तो वास्तव में शरीर भी जो हमारा है ये किसका बना हुआ है, लाइट का बना हुआ है, इसमें स्थूल चीज है ही नहीं। अब कैसे माने, ये तो सब मानते हैं ना कि कोई भी चीज है अगर उसको तोड़े तो कण बन जाएंगे छोटे छोटे, है ना, मॉलिक्यूल्स। अगर उन कणों को तोड़े तो इतने सूक्ष्म कण पैदा होते हैं, मशीन से दिखाई देते हैं दूरबीन से, जिसे कहते हैं परमाणु। परमाणु को तोड़े तो क्या हमने कहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेंगे। उनको और तोड़े तो क्वार्क बन जाएंगे, उससे और छोटे कण भी होते हैं जिन्हें बोसोन कहते हैं। तो अंतिम जो कण होता है, तोड़ते तोड़ते तोड़ते, एटम बम का नाम तो सुना है ना सबने, एटम बम में क्या होता है, इतने सूक्ष्म कण होते हैं, उन कणों को तोड़ते हैं और तोड़ते तोड़ते जब सबसे सबसे सूक्ष्म कण टूटते हैं तो उसमें ढेर सारी एनर्जी निकलती है। और क्या निकलता है, लाइट निकलती है, गर्मी निकलती है ना, लाइट की तरंगे, गर्मी की तरंगे, एनर्जी निकलती है और वो कितनी विध्वंस कर देती है। यानी कि हजारों किलो के अगर चट्टाने बनाई जाए कोयले की, ये धातु की, उससे कोई इतनी शक्ति पैदा नहीं होगी जलाने से, लेकिन अगर एक 10 ग्राम कोयले के कण तोड़ दो तो एटम बम के बराबर विस्फोट हो जाएगा उसमें, इतनी शक्ति होती है उसके अंदर। तो जितनी सूक्ष्म चीज होगी उतनी ही शक्ति ज्यादा होगी। तो हमारा शरीर भी बहुत सारे कणों से बना हुआ है, इन कणों को तोड़े अगर तो परमाणु एटम, एटम को तोड़े इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनको भी तोड़े, तोड़ते तोड़ते वैज्ञानिकों ने देखा कि अंत में क्या बचा, अंत में लाइट के किरणें तरंगे नजर आती, छोटे छोटे तरंगे लाइट के, और वो तरंगे भागती रहती है इधर उधर। तो हमारा शरीर वास्तव में देखा जाए तो फरिश्ता शरीर ही है ये, लेकिन स्थूल आंखों से और स्थूल ज्ञान की वजह से हमें ये स्थूल दिखाई देता है। तो वास्तव में स्थूल है नहीं ये, अगर इसका एक एक कण अलग कर दिया जाए तो लास्ट में क्या बचेगा, रोशनी बचेगी, लाइट 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 और माइट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसी परम धाम से शायद ऐसा हो सिस्टम में, परम धाम से जैसे बाबा कहते हैं तीन लोक में से आगे चल के संगम युग खत्म हो जाएगा जब, तो दो ही दुनिया रह जाएंगी, एक ब्रह्मलोक और एक स्थूल लोक, बीच में सूक्ष्म लोक बनता है कब, संगम पे। इसका मतलब सूक्ष्म तत्व सफेद पैदा हुआ, ब्रह्म तत्व से पैदा हुआ ना, तो ब्रह्म लोक का ही कुछ हिस्सा सूक्ष्म लोक बन जाता है और बाद में यही सूक्ष्म लोक ब्रह्म लोक में जाके मर्ज हो जाता है, तीन कलर की जगह दो कलर रह जाते हैं। तो इसका मतलब जो परमात्मा एनर्जी है उसका ही स्थूलीकरण हुआ तो सूक्ष्म लोक बना, और स्थूलीकरण हो गया तो स्थूल लोक बन गया। अब स्थूल लोक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा, साइंटिफिक दृष्टिकोण से, तो तोड़ के मॉलिक्यूल बने, बहुत रेत के कण बने, तोड़ो तो एटम, तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको तोड़ो क्वार्क लास्ट में बोसोन, और वो क्या है, लाइट की एनर्जी है। अगर उस मशीनों से देखो जो एटॉमिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो आपको दिखाई देगा कि शरीर कुछ नहीं है, ये सब लाइट के कण बहुत सारे चिपके हुए एक शेप के अंदर, जैसे टीवी के अंदर दिखाई देते हैं। तो वास्तव में वैज्ञानिक भाषा से तो हम सब फरिश्ते हैं ही ऑटोमेटिकली, है ना। तो शरीर क्या है, अच्छा एटम बम भी कैसे बनता है, ये सकाश की बात पे मैं आ रहा हूं इसलिए बताना जरूरी है। एटम बम में क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म कण है एटम, उस पर न्यूट्रॉन की बारिश करते हैं, जिक्र कर रहे थे एटम बम के बारे में। सबने सुना है, बच्चा बच्चा भी जानता है कि एटम बम में इतनी शक्ति होती है कि देश के देश नष्ट कर दे। और जब कोई एटम बम का विस्फोट होता है तो लाइट गर्मी एनर्जी पैदा होती है, है ना। तो वही शक्ति वही सिद्धांत हम सकाश के रूप में यूज करते हैं, साइलेंस पावर बाबा जिसे कहते हैं। तो साइलेंस पावर में क्या है कि जब हम किसी एटम को तोड़ते हैं तो तीन तरह की तरंगे निकलती है, अल्फा बीटा गामा और बीटा। तो अल्फा होती है पॉजिटिव तरंगे, बीटा होती है निगेटिव तरंगे, और गामा होती है न्यूट्रल। तो जैसे हमारे थॉट्स भी आत्मा में से क्या निकलते हैं, आत्मा और एटम में ज्यादा फर्क नहीं है, आत्मा और एटम अगर हिंदी में लिखें एटम को तो क्या लिखेंगे? आटम, है ना। एटम को हिंदी में आटम लिखेंगे। आकर अंडा लगा दिया तो आत्मा बन गई। तो एटम है स्थूल प्रकृति की और आत्मा है चैतन्य प्रकृति। अवेयरनेस है आत्मा में, तो एटम के अंदर अवेयरनेस आ जाए तो उसको आत्मा कहेंगे। तो एटम क्या है? नॉन लिविंग, और आत्मा है लिविंग एटम, एक तरीके से लाइफ एटम कहें। तो ऐसे ही वही तीन, जब एटम बम में विस्फोट होता है तो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं जिनके अंदर निगेटिव पॉजिटिव आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो उनकी बौछार करते हैं दूसरे एटम्स के ऊपर। और जब न्यूट्रॉन की बौछार होती है तो परमाणु टूट जाता है। जब परमाणु टूटता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अलग होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग होते हैं तो उससे ढेर सारी एनर्जी और लाइट पैदा होती है। तो वो न्यूट्रॉन क्या है? साइलेंस पावर। वो एटम की साइलेंस पावर है। और ये विचारों की, हमारी आत्मा की साइलेंस पावर क्या है? तो साइलेंस क्या है? ना विचार पॉजिटिव है ना विचार नेगेटिव है, वही तो साइलेंस है, न्यूट्रल हो गया ना। तो ऐसी परम धाम से जब बाबा से हम न्यूट्रल करंट लेते हैं, साइलेंस की किरणें, शांति की किरणें, और उसको इस शरीर के ऊपर डालेंगे या किसी भी जगह डालेंगे, प्रकृति के तत्वों पे या किसी आत्मा के ऊपर, किसी शरीर के ऊपर, अपने या दूसरे के, तो वो साइलेंस की जो पावर है न्यूट्रल तरंगे, उस तत्व को या उस आत्मा को या उस शरीर को शक्ति प्रदान करती है। तो जैसे न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो वह विस्फोट होता है एनर्जी और लाइट, ऐसे ही साइलेंस पावर परमात्मा से, बाबा से लेके आत्मा के द्वारा जब हम डालते हैं किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की बरसात होती है एक तरीके से, और उस व्यक्ति को शक्ति की, एनर्जी की अनुभूति होती है। तो वो एनर्जी अगर हम दूसरों पर यूज करेंगे, जैसे ईसा मसीह में बहुत सारे साधु संतों में ताकत है, जरा छुआ, दृष्टि डाली और भयंकर रोग भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे इतिहास में अनेक एग्जाम्पल हैं। तो वो पावर हमारे अंदर भी है, साइलेंस पावर होती है उनके पास। वही साइलेंस पावर हम बाबा से लेके शांति सागर से अपने ऊपर या औरों पे डालें, तो वो साइलेंस पावर, बाबा कहते हैं साइलेंस पावर से तुम चमत्कार कर सकते हो। चमत्कार माना जो आम आदमी की समझ से बाहर है। तो ऐसे चमत्कारिक प्रभाव साइलेंस पावर से हम कर सकते हैं, शरीर को शक्तिकरण करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए, इसके रोग नाश करने के लिए, और दूसरों को भी रोगों से मुक्त करने के लिए, और बेहद की प्रकृति और शरीर दोनों को शक्तिशाली बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए हम साइलेंस पावर का अगर प्रयोग करेंगे, जिस सकाश कहते हैं, तो हमारा शरीर और ये बेहद की प्रकृति दोनों शुद्ध और शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना, इस बेहद की प्रकृति को भी शुद्ध बनाने के, पावन बनाने के निमित्त तुम ब्राह्मण बच्चे हो। तो कैसे बनेगी? उसकी विधि यह है कि जैसे एटम बम की, न्यूट्रॉन्स की बारिश से विस्फोट होकर शक्ति और प्रकाश की ऊर्जा निकलती है, ऐसे ही शांति सागर बाबा से हम किरणें लेके परमधाम में, और उस किरणों को नीचे भेजें इस शरीर के अंदर, और इस शरीर से होते हुए सारे संसार को भेजें, तो ये हद की प्रकृति और बेहद की प्रकृति दोनों ही पावन, माना शुद्ध और शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यह सकाश का प्रयोग। और भोजन जब भी खाएं तो बाबा के सामने अर्पण करें कि बाबा यह भोजन आपकी भंडारी से, आपके भंडारे से बना हुआ है, और इस भोजन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाएं। तो अगर बाबा की किरणें उस भोजन पर डालेंगे, कच्चे पर भी, बनाने के बाद भी बाबा को भोग लगाकर, तो भोजन भी शुद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा। तो यह सकाश के द्वारा, बाबा की शक्ति के द्वारा, साइलेंस के पावर के द्वारा शरीर को, तत्वों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने का। तो अगर ये चार प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ शरीर के काफी रोग हम नष्ट कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आत्मा और शरीर के विकार और विकृति से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके देखें, 41 दिन प्रयोग करें, अपने शरीर पर भी करें। दुनिया को सकाश तो देते हैं, अपने शरीर को भी सकाश दें, क्योंकि ये भी बाबा की सेवा का साधन है। ठीक है। फिर अपना अनुभव आप लिखना मधुबन में, कि आपने जो जो आज कलर आज सुना, खुशी का प्रयोग और ये वाला, इसके द्वारा आपको क्या लाभ मिला, तो आप अपने अनुभव लिख के भेजना, तो फिर जानेंगे कि आपने कितना लाभ उठाया और प्रैक्टिकली कितना रिजल्ट आया। तो हमने देखा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं, फिर आप उसका प्रयोग करना, अपने अनुभव लिखना, तो फिर आगे इस विषय पे, ठीक है। तो ओम शांति।